તારીખ 5/3/1992 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 739 અને 740 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 339
પત્ર મિલા થા મમ્મી જી કા પત્ર મિલા શુક્રવાર આના હુઆ બુધવાર કો પત્ર લિખા હૈ ચાર દિન કે બાદ યહાં થોડી ભી સ્થિતિ સંભવ હૈ થોડે દિન રુકેંગે નડિયાદ કો અનુક્રમ સે કિસ ક્ષેત્ર કી ઓર વિહાર હોના સંભવ હૈ તથા દેવકરણ આદિ મહિનો કા જહાં એકત્ર હોના સંભવ હૈ યે સૂચિત કર સકે તો સૂચિત કરને કી કૃપા કર જે વ્યવહારિક સમાચાર પૂછાયા હૈ આપ લોગોં કા વિહાર કિસકે જુડે હોના હોને વાલા હૈ ઓર કહાં આપ મિલને વાલે હૈ દ્રવ્ય છે ક્ષેત્ર છે કાળ છે ઓર ભાવ છે એ ચાર પ્રકાર છે ઓર પ્રતિબંધતા આત્મા કે રહેને વાલે નિર્ગ્રહ કે લીએ કહી હૈ યે વિશેષ અનુપ્રેક્ષા કરના કે જિન્હોને સર્વસંગ પરિત્યાગ કિયા ઓર નિર્ગ્રંથ દશા કો પ્રાપ્ત કિયા હૈ મેને કહી ભી મૌકિ ગ્રંથ જિસકો નહીં હૈ એસે મુનિયોં કો કિસી અન્ય પદાર્થ સે કિસી ભી અન્ય ચીજ વસ્તુઓં સે યા મનુષ્યો સે યા દૂસરે પ્રાણીઓં સે કિસી ક્ષેત્ર સે મેને કિસી ગાંવ નગર જિલ્લા આદિ કોઈ ક્ષેત્ર છે કાળ છે કોઈ સમય કોઈ પસંદગી કરે ઉસ પ્રકાર છે યા ભાવ છે યા કિસી પરિસ્થિતિ કો પસંદ કરે એસા કોઈ પ્રતિબંધ પડા પ્રતિબંધ મેને જહાં અપને કો અચ્છા હોય રાગ કા બંધન હોય એસા નહીં હોના ચાહીએ जिसको निर्गृह दशा की प्राप्ति है उसे दृढ़ क्षेत्र का भाव का प्रतिबंध बना नहीं होना चाहिए। मैंने सभी प्रकार से किसी भी अन्य पदार्थ या अन्य पदार्थ के भावों से अपना राग या द्वेष का बंधन या मोह का बंधन निर्गृह को होना नहीं चाहिए। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है निर्ग्रंथ के लिए करूंगे मैंने ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ऐसी आज्ञा है ऐसे ऐसा फरमान किया है यह आप लोगों को भी विशेष अनुपेक्षा करना योग्य है। आप लोग भी कहीं जाते हो तो कहीं भी अपना संबंध मत रखे किसी मनुष्यों से किसी समाज से किसी गांव से किसी भी तरह की परिस्थिति से अपना लगाव नहीं होना चाहिए। यही बार बार भावना में अनुपेक्षा में या अभ्यास में लेने लेने योग्य है। सभी तीनों शास्त्रों के विचार करने का योग रहता है। आप लोगों का अभी तीन शास्त्रों का विचार करते हो यह सूचित कर सके तो सूचित करने की कृपा करें। ये भी समाचार पूछा है आज तक आपका किन किन शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है वो भी बताइए। श्री देव करणाली मुनियों को नमस्कार समाप्त हो। उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से जो भी उनके संग में थे उनको जय जिनेन्द्र कहा है। ये व्यावहारिक दृष्टि से नमस्कार समझना, जैसे आपस में मिलते हैं तो व्यवहार नमस्कार का करता है, जैसे कभी फोन आता है तो क्या समझते हैं नमस्कार का ऐसा कहते हैं, तो उसमें कोई धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है, ऐसा समझना। जैसे सात सौ उनचालीस पत्र में कोई खास तात्विक बात नहीं है, सिर्फ मुनियों को किस प्रकार की विनेन्द्र देव की आज्ञा है उतना एक पंक्ति में सूचित किया है। सात सौ चालीसवां पत्र है अंबाला घर पर, उसी दिन लिखा है, आत्मसिद्धि का विचार करते हुए आत्मा संबंधी कुछ भी अनुपरीक्षा रहती है क्या, वह लिख सकते हैं लिखें। आत्मसिद्धि की रचना 142 पद की रचना किया है महाकाव्य, तो उसको पढ़ते हुए आत्मा संबंधी बार बार कोई विचार आता है, अनुपरीक्षा मैंने बार बार भावना बोली, उसको अनुपरीक्षा कहता हूँ। अपने यहाँ प्रसिद्ध है बारह क्षण के बार भावना, बार भावना कुल सुंदाचार्य लिखते बारह क्षण के बार बार जिसकी भावना हो उसको अनुपरीक्षा कहते हैं। ये लिख सके तो लिखे, कोई पुरुष स्वयं विशेष सदाचार में तथा संयम में प्रवृत्ति करता है, उसके समागम में आने के इच्छुक जीवों को उस पद्धति के अवलोकन से जैसा सदाचार तथा संयम का लाभ होता है, वैसा लाभ प्राय विस्तृत उपदेश से भी नहीं होता, यह ध्यान में रखना योग्य है। बहुत सुंदर बताई उन्होंने कि प्राय दूसरे के चारित्र निर्माण करने में उपदेश का प्रयोग है तो बहुत किया जाता है, लेकिन उपदेश का प्रयोग से जितना लाभ नहीं होता है, विस्तृत उपदेश है, बहुत उपदेश है, इससे ज्यादा लाभ स्वयं के विशेष सदाचार और संयम की प्रवृत्ति से होता है। उन्होंने ये पद्धति रखी थी क्या, खुद श्रीमद जी अपना जीवन इतना व्यवहारिक जीवन से भी इतना शुद्ध जीवन में जीते थे कि उनके समीप में रहने वाले को स्वयं बोध मिले, कहना नहीं पड़े कि तुमको ऐसा रहना है, जैसे सदाचार में सच बोलना है। वो तो गृहस्थी थे, व्यापार करते थे, लेकिन सत्य रचन का प्रयोग करते थे, तो उनके संसर्ग में आने वाले, संपर्क में आने वाले जो भी लोग थे उनको ये पता चलता था कि इस आदमी को व्यापार में नुकसान देता है, अपने को नुकसान देता है, तो भी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, तो उस पर से जो लोग मिलता है ऐसा भी उपदेश मिलने वाला नहीं है। क्या मतलब हुआ उसका, कि उपदेश है वो एक थियोरी है, क्या है वो एक थियोरी है, और अपना जो स्वयं का प्रवृत्ति है सदाचार है आचरण है वो तो खुद प्रयोग है, तो जो बोध मिलता है थियोरी से उपदेश है और उतना इफेक्टिव उतना असर करता नहीं रहता दूसरे पर, जितना स्वयं का आचरण दूसरे पर असर करता है, क्योंकि ये प्रयोग का विषय हो गया दूसरी प्रयोग में उपदेश के विषय में कितना अंतर पड़ता है।
मुमुक्षु का क्या मुमुक्षु का क्या
मुमुक्षु का क्या आचरण होना चाहिए, मनुष्यों का मनुष्य के योग्य आचरण होना चाहिए, जैसे कि भाई में सदाचरण है, देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण है, भक्ति है, शास्त्र अध्ययन है, और अपने आत्महित के लिए मुख्य बात यह है जिसको हम आत्मा से पना कहते हैं, क्या कहते हैं
आत्मा की,
कि हमारा आत्मा का अहित न हो और आत्महित हो, इस विषय में मुमुक्षु की पहली दृष्टि होनी
चाहिए
और सूक्ष्म दृष्टि से इस विषय में चलना चाहिए कि जिसे हमारे परिणाम आराधना के सम्मुख हो और कहीं भी हमारे से विराजना
हो।
ये मुमुक्षु का मुख्य कर्तव्य है। यहाँ पर उन्होंने कोई लाक्षणिक पद्धति से बात किया है कि जब आप मुमुक्षु लोग आपस में मिलते हो, सत्संग करते हो, तत्व के विषय में विचार विमर्श करते हो, तो कहीं एक दूसरे को बात करने में उपदेशक बन जाते हैं। क्या हो जाता है, व्यक्ति बन जाते हैं, दूसरे का भूल दिखता है, दूसरे का दोष दिखता है, तो खुद उपदेश बन जाता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि विस्तृत उपदेश से भी जो लाभ अगले को नहीं होता है, ऐसा लाभ स्वयं के आचरण से होता है। मतलब ये है कि आप अपने आचरण को ठीक करो पहले, उसके पहले उपदेश देना नहीं चाहिए। एक तो उपदेश देने के विषय में वो बात हो गई, दूसरी बात यह है कि उपदेश लेने के विषय में भी विस्तार से उपदेश सुने या बहुत बहुत शास्त्रों का अध्ययन करें उपदेश ग्रहण करने के लिए, उसके इसका असर जो भी आत्मा पर आएगा, उससे ज्यादा असर कोई सदाचरण और संयमित जीवन के जीने वाले का संग से आएगा। क्या होगा, अगर उपदेश का ग्रहण करना है, बोध लेना है, तो आसान तरीका कौन सा है, कौन सी पद्धति से उपदेश का असर ज्यादा रहता है, कि शास्त्र सुनने से या अध्ययन करने से जितना असर आत्मा को नहीं होगा, उतनी असर दूसरा जो समाज को सदाचार में प्रवृत्ति करता है उसके समाज में आने से या उसके समाज में आने की भावना से जीवों को उसका लाभ होता है। क्योंकि उस पद्धति से अवलोकन से वैसा सदाचार तथा संयम का लाभ होता है, इस प्रवृत्ति का अवलोकन होता है, तो परिणाम पर बहुत अवलोकन करने वाले को असर आती है, बहुत चौंक मारती है, देखिए इसका जीवन कितना शुद्ध है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। विषय का संक्षेप इतना है कि परिभाषा जिसको हम थ्योरी कहते हैं, परिभाषा से प्रयोग बहुत बलवान है। सिद्धांत यह है इस बात का कि किसी भी परिभाषा से प्रयोग की बलवत्तरता बहुत होती है। इसीलिए मुख्यतः हमें प्रयोग से काम करना है, भाषा के प्रयोग को समझाने की उम्मीद है, इसके आगे इसकी कोई मर्यादा, इसके आगे इसकी कोई मर्यादा नहीं है।
प्रयोग की बात बहुत अच्छी है, प्रयोग की बात बहुत अच्छी
बात है। उन्होंने ये बात कही है, प्रयोग का विषय ज्ञानी यानी बहुत कहा है, इसलिए कि वो खुद ही जीवन में प्रयोगात्मक पद्धति से जीवन जीते हैं और इस विषय को वो अच्छी तरह चारों परतों से जानते हैं कि कैसे आत्मलाभ विशेष रूप से हो सकता है।
अवलोकन पर समझ में
अवलोकन मैंने देखना, जैसे दो मित्रों का संग होता है, दो मुमुक्षुओं का संग होता है, तो या फिर कितना भी हो तो एक दूसरे का आचरण देखने में आता है कि नहीं आता
है।
आचरण देखने से अच्छा संयमित आचरण हो, सदाचार का आचरण हो, तो जो संग में होते हैं उनको उसकी नजर आते हुए उसके बहुत असर आते हैं। और ऐसी भावना जो है उपदेश ग्रहण करने की जिसको भावना है, उस भावने वाले को बहुत अधिक पैमाने में उसका लाभ होता है, बहुत अधिक मात्रा में उसका लाभ होता है। शास्त्रों में भी सत्संग और कुसंग के विषय में सभी शास्त्रों में बहुत बात आई है। उसका यही कारण है कि कुसंग से उल्टा प्रयोग हो जाता है, करना प्रयोग करना है ऐसा विचार नहीं होने पर भी कुसंग से उल्टा प्रयोग हो जाता है। सभी जीव के संसार में ऐसी अवस्था है कि संयोग में आने वाली चीज की, आने वाली चीज की कुछ न कुछ असर हो रही है अवस्था पर। संसार में उसको संस्कार मल कहा है। संस्कार में से देखा जाए तो दूसरे संयोगिक पदार्थ का संस्कार जीव की अवस्था पर आ जाए, ऐसा एक जीव की अवस्था का धर्म है। उस धर्म को देखने वाले संयोग नाम को संस्कार मय करने में आता है। तो संस्कार में से देखा जाए तो जीव दूसरे पदार्थ के कुछ न कुछ प्रकार के असर को ग्रहण करता है। इसलिए जिसका भी संग करना हो उस विषय में हमें विवेक करना आवश्यक है। तो कहीं हमारी अवस्था बिगड़े तो नहीं, जिसका संग करने से हमारी अवस्था में नुकसान तो नहीं है। ये नुकसान रुपये पैसों में नहीं होता है, ये नुकसान शांति अशांति में होता है। भाव का नुकसान शांति अशांति है और व्यवहार में तो सिर्फ रुपये और आदमी को मान सम्मान को ही नुकसान समझते हैं या पैसा को ही नुकसान समझते हैं। यह ये प्रकरण नहीं है। यह तो जीव को मतलब है अपने शांति से और अपनी अशांति से। वहां भी आखिर में तो वही बात है, कुछ भी प्रवृत्ति करके जीव को सुख शांति चाहिए और दुख और अशांति नहीं चाहिए। मैंने इस विषय में बहुत तीक्ष्ण दृष्टि से मुद्दे की बात को पकड़ रखी है कि हमारी शांति कैसे प्राप्त हो या हमें कैसे अशांति की प्राप्ति होती है। उसका विज्ञान को अच्छी तरह जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान की ये परिभाषा है कि वे शांति अशांति के विज्ञान को ठीक तरह से अपने अनुभव से जानते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। पर इस विषय में जो अनुभिज्ञ है, अनजान है, उसको अज्ञान कहते हैं। क्यों? कि वह ऐसा परिणाम करता है कि जिससे अपनी अशांति उत्पन्न होती है, पैदा होती है। अपने हाथ से अपनी अशांति को पैदा करने वाले को अज्ञानी कहते हैं। अपने आप को अशांति में जो धकेलते हैं, डाल देते हैं और शांति से दूर हो जाते हैं।
अनुकूल जीवन की प्राप्ति होती है, अनुकूल जीवन की प्राप्ति होती है, अनुकूल आदमी की प्राप्ति होती है, तो उसमें तो प्रसन्नता का अनुभव होता है।
प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि ऐसा मान रखा है, क्योंकि ऐसा मान रखा है। तो उसका देश क्या है? मान्यता। सभी परिणामों में मान्यता का आधार रहता है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में सबसे पहले मान्यता का सुधार करने का उद्देश्य है। सम्यक दर्शन क्या चीज है? मिथ्या दर्शन में गलत मान्यताओं पर संयोग दर्शन में सही मान्यता है। जो सही मान्यता होगी तो ज्ञान भी सही होगा, मान्यता गलत होगी ज्ञान भी गलत काम करेगा। जैसे आपने कहा कि अनुकूल संयोग मान सम्मान मिलता है तो हमें प्रसन्नता रहती है, क्योंकि हमने ऐसा मान रखा है। तो हम अनुकूल संयोग और मान सम्मान जुटाने के लिए क्या क्या नहीं करते बताइए। इसके लिए क्या क्या नहीं किया जाता जगत में, तो बुरे से बुरा था, गंदे से गंदा था, नीच से निष्कृत करने में आता है, क्योंकि पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो मान सम्मान मिलता है, तो हमने मान्यता बना रखी है कि इससे हमारी प्रसन्नता होती है, पैसा भी काम कर लेते हैं, ये हालत हो जाती है। इसलिए हमारी मान्यता ठीक है, समीचीन है या समीचीन नहीं है, इसका इसको बताने वाला जो विज्ञान है उसको सत्शास्त्र कहते हैं। क्या सत्शास्त्र कौन सी चीज है? कि जो सही मान्यता किसको कहे, मिथ्या मान्यता गलत मान्यता किसको कहे, सही ज्ञान किसको कहे, मिथ्या ज्ञान किसको कहे, सही आचरण किसको कहे, मिथ्या आचरण किसको कहे, सही पुरुषार्थ किसको कहे, मिथ्या पुरुषार्थ किसको कहे, सच्ची शांति किसको कहे, दुखी आयते कुशल, अशांति जो है उसको शांति कहते कहने में आती है वो कैसी होती है, तो सभी प्रकार का सारे पक्षों से विश्लेषण जिसने किया हो उसको सत्शास्त्र कहने में आया है। विशेष बात यह है इस विषय में कि जिन्होंने ये बात कही है तो कुछ दूसरों की किताबों पढ़ करके कुछ बात कल्पना करके विचार करके फिर अनुमान करके अपना शास्त्र बना दिया, नई किताब बना दिया, ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ये शास्त्र बनाया है उन्होंने इस बात का अपने जीवन में प्रयोग करके अनुभव करके अनुभव को सिद्ध करके इस बात को लिखी है, उसी को शास्त्र कहते हैं। इसलिए ये भी एक मर्यादा है शास्त्र लिखने वालों की कि अनुभवी पुरुष को ही शास्त्र लिखना है, जिसको इस विषय में अनुभव नहीं है उनको शास्त्र नहीं लिखना है। क्या बात है? यहाँ से क्या बात निकलती है? कि पंडितों को शास्त्र लिखने का अधिकार नहीं, वे सिर्फ विद्वान है और आत्मानुभवी नहीं है, ऐसे विद्वानों को पंडितों को शास्त्र लिखने का, पुस्तक लिखने का, किताब लिखने का अधिकार नहीं होता। क्या बात
है?
उसके मैंने उसके इतने कारण नहीं पड़ती है, ये तो अनादि देशना लब्धि का सिद्धांत है ही किंतु सही बात उसको ग्रहण में ही नहीं आती है, क्योंकि प्रयोग की बात तो प्रयोग से ही समझी जाती है, प्रयोग की बात परिभाषा से समझी नहीं जाती। ये तो अपने विषय चलता है, जैसे साइकिल सीखता है तो क्या उद्देश्य कोई साइकिल सीख सकता है? साइकिल चलाने को सीखे तो हाँ
शंका है जी। आज के युग में जी विद्वान अपनी पीएचडी करने के बाद
अपनी
पीएचडी
पीएचडी करना
करने के बाद
हाँ
हर आदमी अपने रूप की बात
करता
है, और वो अपनी पेड़ी से और वो जिनारी धर्म पहुंचती
है
और वो हर कई मैंने देखा नहीं होता है किसी की किताब में, कोई किताब किसी की किताब में
मानता है सुन
अच्छा ऐसी स्थिति में क्या है?
पहले तो पढ़ने वाले को एक पढ़ने के विषय में सिद्धांत बनाना जरूरी है, कि जैसे हमें किसी अरे बेरे का संग नहीं करना है, सबका संग करना योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं असत्संग या प्रसंग हो जाता है तो इसका संस्कार अपने अव्यवस्था पर आने से नुकसान हो जाता है। वैसे ही हमें हर किताब या हर पुस्तक भी पढ़नी नहीं है, उसमें भी हमें सिलेक्शन करना है, पसंद भी करनी है कि हमें कौन से पुस्तक कौन सी किताब कौन से किताब पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, उसका हमें पहले निर्णय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। और उसका निश्चय करते ही करने के बाद ही हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। जैसे व्यवहारिक जीवन में हम धंधा करते हैं तो लाभ पैसे का लाभ करने के लिए तो धंधा करते हैं, कोई नुकसान करने के लिए तो धंधा नहीं करेंगे, तो कोई हमारे संबंधी ये कहेंगे तुम्हारी गहरा का गहरी का धंधा है बहुत बढ़िया है, अब वो कर लो ना, तो जब पालतू धंधे में उतना नहीं मुनाफा होता है, वो तो गहरे को कितने पैसे वाले हैं, गरीब में से पैसे वालों की जमात है, तो ये गौर के वालों का ज्यादा व्यक्ति है, तो ये तो सीधी साधी बात नजर में आती है कि यहाँ कमाई ज्यादा है, आप यही धंधा कर लो ना, हमें आता नहीं है, हमें पहले सीखना पड़ेगा कि ये धंधा कैसे होता है, फिर करेंगे। तो जैसे कैसे हम घुस जाएंगे तो ले लो बेच दो, ले लो बेच दो, तो लाख का 12,000 हो जाएगा। तो हर बात में पहले सोच समझ करके प्रवेश करना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में भी जिस क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है वहां भी सोच समझ करके हमें प्रवेश करना पड़ता है। वैसे ये शांति अशांति का जो हमारी समस्या है अनादि से है, जीव की समस्या, सभी संसारी जीव की सुख दुख की समस्या अनादि से है, और उसका विज्ञान को बिना समझे अंधश्रद्धा से हमें कोई बात नहीं माननी है, भले ही हमारा गुरु कहने कही हो, हमारे भगवान ने कही हो,
आपके पास भी कोई समझना चाहिए जिसे बहुत ही साफ करना चाहिए, लेकिन अज्ञानी जो कमाई करने रहता है अपने ज्ञान के लिए, उसको ज्ञान कहाँ मिल रहा है तो कुछ तक उसको पता नहीं ना, अज्ञानी ज्ञान के साथ और अज्ञानी आप अगर ज्ञान में रहता करेंगे तो कोशिश देते, जैसे व्यापारी कह रहे हैं जीरो मैं चेंज और उसका मुझे कोई मुझे बात नहीं दे सकता, ऐसा मैंने कभी किया नहीं मिलता, दो साल का व्यापारी कोई बात देने वाली मिल जाते हैं, वैसे ही एक ये एक पात्र में अलग अलग क्षेत्र चलना असंभव,
बिल्कुल असंभव, कतल ही असंभव है क्या?
ज्ञानी के लिए तो कोई पुस्तक डॉक्टर उठाता है जिसको उससे ज्ञान मिला है, अज्ञानी के लिए एक रुपया जिसको तो चलता लिया देगा और चलता और उसी बात को निवेदन देता है, एक ज्ञान को बोलता है एक दोस्त बोलता है, इसलिए मैंने पहले आपसे चर्चा की और मैं तो बात मेरा मत कहते थे आपसे मैं बहुत अलग तरह बैठ कर और अपना जीवन को सुधारो, हमने कई तो भाई बताया कि कहा सही संग्रह और मौका भी मिलता
है, मौका तो आपको मिलता है बहुत अच्छी सुविधा है, तो ऐसा है हम हमारे जीवन को इस विषय में हमारा अनुभव को देखते हैं,
मैं
हम पहले पढ़ते थे हमारी युवा अवस्था में हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे, फिर हमारी पढ़ाई पूरी हुई और हमारे कमर्शियल क्षेत्र में हमारा प्रवेश हुआ, तो हम किसी धंधे को नहीं जानते थे, हमें क्या व्यापार करना चाहिए, क्या नौकरी करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये हम जानते नहीं थे, पढ़ते पढ़ते अनेक प्रकार के विचार तो किए थे, पढ़ते पढ़ते अनेक प्रकार के विचार तो किए थे कि हम कोई तकनीकी लाइन में या कोई हम योग पति हो जाए या हम कोई नौकरी अच्छी गवर्नमेंट की कर ले या हम कोई अच्छे व्यापारी हो जाए, कई प्रकार की कल्पनाएं तो बनाता है जी। फिर भी जब समय आता है आर्थिक क्षेत्र में हमारा प्रवेश होता है तो हमें किसी न किसी अनजान होते हुए भी एक बात का निश्चय करना पड़ता है। कहते हैं क्या कहते हैं इस पद्धति को इस मेथड को ट्राय एंड एरर ऐसा कहते हैं। तो अच्छा उदाहरण भी लग होते हम दूसरे लिख देते हैं आपको, इसका मतलब क्या कि हमने ट्राई कर दी एरर मैंने भूल हो गई तो लागू नहीं होती है दूसरे लागू करेंगे। ऐसे जीवन में वास्तविक तौर से देखे तो ट्राय एंड एरर पर कुछ मेथड से ही आगे बढ़ा पढ़ा होता है। तो ये हो सकता है कि कोई नई पढ़ने योग्य किताब भी आ जाए, कोई पढ़ने योग्य किताब आगे किताब भी आ जाए, कोई नई संग करने योग्य व्यक्ति का संग हो जाएगा, कहीं संग होने लायक सत्संग भी हो जाएगा। ऐसे कई प्रकार के एक प्रयोग काल होता है जिसमें यथार्थ निश्चय करना जिसको बाकी है वो निर्णय करना कर बैठना है, इस प्रकार से एक सही निश्चय पर आने का होता है। और इस विषय में एक बात बहुत स्पष्ट है कि हर जीव अपने मकसद में अपने प्रयोजन में हमेशा चतुर होता है। क्या हर मनुष्य जो अपने प्रयोजन को अपने मकसद को अच्छी तरह पकड़ के रखता है अपने दृष्टिकोण में तो उस विषय में चतुर हो जाता है। तो उस विषय में उसको अनेक प्रकार के ट्रायल एंड एरर इस मेथड से काम लेने पर उसको ये पता चल जाएगा कि ये साहित्य हमारे लिए ठीक है, ये साहित्य हमारे लिए ठीक नहीं है, ये व्यक्तियों इस मनुष्यों का संग हमारे लिए ठीक है, उन मनुष्यों का संग हमारे लिए नहीं ठीक है, वो पता चल जाएगा। जैसे मैं मेरी अपनी बात करूं तो मैं तो आता हूं वैष्णव से, तो हमने हमारे जो संप्रदाय है उसकी किताब पढ़ी थी, सब भगवद गीता पढ़ी थी, वेदांत में भी कुछ माथा लगाया था, श्रीमद भागवत पढ़ा था, रामायण पढ़ी थी, महाभारत पढ़ा था और भी विचार सागर आदि अनेक जो ग्रंथ है तत्वज्ञान के हैं तो अनेक प्रकार के ग्रंथ भी पढ़े थे और कुछ युवा भी वो विषय जैन शास्त्र भी हमारे पढ़ने में आया, वरना तो पढ़ने में नहीं आया। संप्रदाय में तो ऐसा है कि हम तो हमारा पढ़े अपना अपना सब पढ़ते हैं, हम हमारे दूसरे का क्या करें, सब अपना अपना ही काम करें, जैसे अपना घर संभाले अपनी दुकान संभाले ऐसा हमारे संप्रदाय में संभाले। लेकिन जब कुछ योगा विषय हमको ये भी मिल गया या वो पढ़ते हुए भी हमें सत्य नहीं मिला था, वो बात सही थी हम खोज में थे, ये सब हम पढ़ते हैं लेकिन हमको सही लाइन नहीं मिल रही है क्या कर जिसको सत्य कहे परम सत्य कहे, ऐसी कोई बात हमको प्राप्त नहीं हो रही है। नो अचीवमेंट खोज चलती रहती है तो उस सिलसिले में हमको ये जैन शास्त्र भी मिल गया, जैन शास्त्र में मिलते ही हमें एक बात समझ मारे ऐसी लगी कि ये कोई रूढ़ी नहीं है, रिवाज नहीं है, संप्रदाय नहीं है, जातिवाद नहीं है, उसमें जो जातिवाद इसलिए नहीं है कि हमारे जंगल ही अनुमति में से आ रहे हैं गौतम स्वामी और समस्या में पुरुष को भी अलाउड करते हैं क्या, उसको नौ अग्निशी का भाव नहीं है तो पुरुष नहीं आ सकते वहां तो देव भी आते भगवान के दरबार में, मनुष्य भी आते और हर जाति के, ऐसे नहीं है कि देव है भंगी है चमार है अशुद्ध है उसको अलाउ नहीं करते, ये भी बात नहीं है उसमें, और पुरुषों को भी आना होता है और उसमें सुख दुख का विषय जो है वो तो वैज्ञानिक तौर से सिद्ध किया है, उसको इसका विज्ञान यहां मिलता है। तो जीव को शांति अशांति क्या चीज है और अपने जो दूसरे संयोग में आने वाले पदार्थ हैं उसका शांति अशांति के विषय में कौन सा एक्शन डायरेक्शन होता है, कैसा भाव होता है, कैसा प्रतिभाव होता है, के सभी प्रकार की बहुत गहरी छानबीन वैज्ञानिक तौर से जिन ग्रंथों में पढ़ी है उनको जैन शास्त्र बोला है। तो हमने बोला कि भले नाम कुछ भी दो, हमें तो हमारा मतलब से काम है। बात मतलब की रही आखिर में, क्योंकि हमें अगर मतलब होता है तो हमारा देश छोड़ कर विदेश में भी जाता है, कहीं जाते हैं। तो क्या हम सही सत्य चीज को प्राप्त करने के लिए लखनऊ छोड़ कर नहीं आ सकते? बैठा है हम अमेरिका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं है? और राजस्थान से बहुत मारवाड़ में लोग कलकत्ता है, है? अगर कोई ज्यादा से ज्यादा आज कलकत्ता में कंट्रोल है तो अपने लोगों का है। कोई तो 100-150 साल से आए हुए परिवार है, क्यों अपने सगे संबंधी परिवार देश इसको छोड़कर क्यों आए? क्या हमें कुछ चाहिए? तो ये तो जिस पैसों से भी, जिस अनुकूलता से भी जो शांति नहीं मिलती है, ऐसी शांति अगर हर हालत में मिल सकती है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति हम पैदा कर सकते हैं, तो इसकी कीमत तो कुछ पैसों से भी अधिक हो सकती है, अनुकूलताओं से भी अधिक हो सकती है। इसलिए अगर वो चीज हमें कहीं भी मिलती है तो हमें कहीं भी जाना चाहिए। हमारे न्यायचंद जी सुगाने भी मारवाड़ी थे, जब उन्होंने आत्मकरण देखा तो उनको एक थोड़ा सा ख्याल पड़ गया कि मुझे जो शांति चाहिए शायद इस जगह मिल सकती है। परिचय नहीं था, मेरे संदेह कभी आए नहीं थे, महाराष्ट्र को कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, लेकिन उनकी वाणी पढ़ते थोड़ा उनको पता चल गया कि यहां ये बात होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ आकार दिखता है। उधर तो फिर 600 किलोमीटर के मुसाफिर करके स्वामी आ गए और उन्होंने जो काम किया है वो जब क्या काम कर दिया आते हैं। तो बात तो रही कि अपने शांति अशांति के प्रयोजन पर हमारी कितनी पकड़ है, कितना इस विषय में हमारा जोर है, और हमें इस विषय में जैसे तैसे भी कुछ परम सत्य की प्राप्ति करते हुए रास्ता हमें पकड़ लेना है, ढूंढ लेना है। ऐसा अगर हम निश्चय करते हैं, निर्धार करते हैं, तो कुछ न कुछ इस दिशा में काम होने वाला है। नहीं, हमारी उपेक्षा है इस विषय में, हमारी उपेक्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हम दूसरे दूसरे काम में उतनी अपेक्षा से उलझते रहते हैं कि जिससे हमारा आत्महित परम हित का विषय में हम उपेक्षित चाहे जाते हैं, और यही कारण से ये काम बनता नहीं है। हम तो मैं अपने साथ जन इस बात को कहते हैं इस तरह से कि देरी प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी। हमारे संसारिक कार्यों की फर्स्ट प्रायोरिटी अनादि से हमें है ही, और इसी वजह से हमारा आत्महित हमेशा लास्ट प्रायोरिटी में रहा है, सेकंड प्रायोरिटी है नहीं रही। अगर हम परिस्थिति को उलटा दें और फर्स्ट प्रायोरिटी में आत्महित को रखेंगे, जब भी आज रखे कल रखे इस भाव में रखे या लाख करोड़ भाव के पीछे रखे या आठों साल के पीछे करेंगे, जब भी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे तब ही इस विषय में कुछ हम हासिल कर सकते हैं। वहां तक हमारी लाख प्रायोरिटी वाली बात में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, भले हम कुछ भी करते रहे लेकिन प्रायोरिटी चेंज किया कि नहीं किया वो बात पहले देखनी है। ये बात को पहले समझनी है कि चेंज ऑफ प्रायोरिटी बनी है कि नहीं बनी है, वरना तो बताओ मुझे खेत के पीछे ही जैसे भेड़िया चलते हैं वैसे ही भेड़ियों की तरह ब्रह्म के क्षेत्र में लोग अंधश्रद्धा से चल चलते मुझे देखने में आता है। ये हालत हमारी हो जाएगी। सात करोड़ 40 पत्र पूरा हुआ, 741 ये पत्र सोनाजी राय के ऊपर लिखा हुआ है। सोनाजी राय से वो श्रीमद राजचंद्र जी से बहुत निकट और एक बहुत पात्र जीव थे। इसके पत्रों में बहुत सी आध्यात्मिक विषय सुंदर बातें लिखी गई है। आगे भी यहाँ परिदंत स्थिति होनी संभव है। क्या बना है उस स्थिति में, जिस स्थिति में पत्र लिखा है उस स्थिति का थोड़ा विचार कर ले। इसलिए उड़ जाने का उन्होंने अपना विचार बताया है। सुराज राय करीब 44 साल उम्र में बड़े थे श्रीमद राय सिंह जी से। 43 साल की उम्र जब उनको मिलना हुआ तब ये करीब 57 साल के होंगे, 67 साल के सिक्सटी और 6-7 साल का इनको सुन संग रहा है। बाद में उनके आयु शुरू हो गई। जब ये पत्र लिखा गया है वो आखिरी साल है, जेठ जब दशम को उसका आयु पूरा हुआ है, थोड़ा बताएगा। और जीवन के उत्तर काल में उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका था, बिल्कुल बेदेश में थे, और बिल्कुल शारीरिक अशक्ति आ रही। उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि आप मैं तो आप पतंजा में सफर करने का मेरी कोई ताकत नहीं, शारीरिक शक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, तो आप इधर आइए, सबसे मालूम होगा। लेकिन वो बार बार उनको उस विषय में कुछ पिछले 3-4 महीने से वायदा देते हैं, 2 हफ्ते बाद आऊंगा, 1 हफ्ते बाद आऊंगा, 3 हफ्ते बाद आऊंगा, ऐसे ऐसे चलता है। तो उस स्थिति में अभी कहते हैं मैं आऊंगा जरूर, लेकिन इधर जाने का विचार रखा है, मैंने इधर जाने का रखा है, तैयार है। क्या कहते हैं, अभी इधर जाने का विचार रखते हैं, तैयार हैं। श्री डूंगर को आने के लिए विनती करें, डूंगर राय कर डूंगर भाई करके उनके सखा को अवसर थे, बस उसको आने के लिए श्रीमद राजचंद्र अभी अभी वर्ष के लगभग 40 है, राज्य में 30 वर्ष 40 है, 17 श्री डूंगर को आने के लिए विनती करो। उन्हें भी तैयार रखें, श्री डूंगर को भी तैयार रखें। उनके चित्त में यूं आए कि बारंबार जाना होने से लोक अपेक्षा में योग्य नहीं दिखाई दे, क्योंकि उम्र में बहुत छोटे थे, श्रीमद जी उम्र में बहुत छोटे थे, वो दोनों बुजुर्ग थे। बार बार हम उनको सुनने को जाएंगे तो लोग हमारी चर्चा करेंगे कि ये लड़का है 25 साल का था जवान, इस लड़के के पास ये बुरे बुरे लोग क्या सुनने को दौड़ते हैं, भगते हैं, बार बार जाते हैं, क्या बात रखी है इसमें। लोग हमारी चर्चा करेंगे। और ये गुंदर भाई वगैरह जो थे वो भी कुछ शास्त्र से अध्ययन करने वाले लोग थे, स्थानकवासी थे, अपने संप्रदाय के शास्त्र पढ़ते थे, कुछ वेदांत के भी शास्त्र पढ़ते थे, कुछ चमत्कार के योग प्रयोग के भी शास्त्र पढ़ते थे। और काफी लोग उनको पूछने के लिए आते थे। क्या बात थी? तो बहुत से लोग तो उनको पूछने के लिए आते थे, धार्मिक विषय में उनकी सलाह लेते थे कि हमें क्या जानना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए। तो इस विषय ऐसे विषय में वो खुद सुन लेते जाए और एक छोटे लड़के को सुनने को जाए तो लोक चर्चा का विषय बन जाएगा। तो कहते हैं कि उनके चित्र में अगर ऐसा आ जाए तो बार बार जाना होने से, हमारे पास बार बार आना होने से लोक अपेक्षा में योग्य नहीं दिखाई दे, अच्छा नहीं लगेगा। लोग हमारी चर्चा करेंगे वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अवस्था में अंतर। क्या बात है? हमारी और उनकी अवस्था में अंतर है बहुत, 40-45 साल का अंतर है। तो लोग चर्चा करेंगे, ऐसा अगर उनके दिल में बार बार आता हो, परंतु ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। क्या कहा? ऐसा विचार करना योग्य नहीं है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए उनको। क्यों? ये लेगा जी के साथ ही है, लेगा सुरेंद्र भाई के ससुर हैं, लखनऊ से आए हुए। तो हम लोग तो उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन क्या है कि कहीं भी हम कोई दूसरे सिटी में जाते हैं कार लेकर, पहले प्रवेश करते हैं और हमें जिसके घर पहुंचना हो तो बहुत से मोड़ आते हैं। किस रास्ते से पहुंचना, कहाँ जाना, वो किसी दिनदारी को पूछना पड़ता है। इसमें क्या है? वो रास्ता अनजान होता है तो किसी को भी पूछना पड़ता है। और यहाँ तो कोई भी हो, पहले परीक्षा अवश्य करनी है कि ये आदमी ने, ये मनुष्य ने ये रास्ता देखा है कि नहीं देखा है, उतना अवश्य परीक्षा कर लेना है। उसकी जांच करने के बाद उसको रास्ता पूछना है। ये संभव है कि रास्ता नहीं देखा हो फिर भी कोई बताने वाला मिल सकता है इस धर्म के क्षेत्र में, तो वहां बुलावे में पड़ जाएंगे, तो हम भी चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्य को रास्ता नहीं पूछना है जिन्होंने रास्ता कभी देखा ही नहीं हो। जिसने रास्ता देखा है उसी को पूछना है। बस उतना विचार करके हमें आगे चलना है और खोज करनी है कि इस परम शांति का सत्य का रास्ता जिसने भी देखा हो, लाखों करोड़ों में कोई एक जीव ऐसा मिल सकता है। इस काल में ऐसी एक परिस्थिति है, दुर्भाग्य से समझो या कैसे भी समझो, ये काल भी ऐसा है कि सत्य मार्ग पाने वाला अनुभूति संपन्न, जिसको कहते हैं हम शास्त्र भाषा में अनुभवी पुरुष, करोड़ों में क्या अरबों में कोई एक मिल सकता है। आज हमारे विश्व की आबादी करीब करीब 6 अरब है, 585 करोड़ से कुछ अधिक है। उस आंकड़े में 6 आदमी उस रास्ते को पाया हुआ अनुभूति संपन्न हो, अनुभवी हो, ये मिलना मुश्किल है। जी जो हमने
ठीक है उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। विद्वान कितने बड़ा हो और उससे बड़ा विद्वान जीवन रायसिंह जी के पास जाने के लिए संकोच करना, ये थोड़ी बुद्धि उन्होंने कहा ऐसा विचार नहीं करना। आपने अभी अपने भविष्य में हर विद्वान को साथ जो पढ़ना चाहिए, जो अच्छे जो पुराने
या तो अनुभवी पुरुष के तरह
हाँ जो आज लेटेस्ट वालों के युग के साथ चेंज हो गया आपको मेरा यही है आप अब अपनी बात सुनाए
असल बात पर आए हैं
हाँ अब आ गया
असली बात पर तो आनंद करता है ना
असलियत में फैक्ट ये है कि शास्त्र जितने भी है समय का जन का जितने भी शास्त्र है ठीक से लेकिन आजकल के जो नीचे नए नए शास्त्र है
लिखने वाले
लिखने वाले हैं उसकी तुलना से पढ़ेगा कि दोनों को बुला ले क्यों उसके साथ चलता है या नहीं चल रहा
है
तो उसके बाद
ठीक है
ठीक
है
क्योंकि
अनुभवी पुरुष है इसके जो शास्त्र हैं जैसे हमारे पूर्वाचार्य हैं महाराचार्य हैं इसके साथ मिलती हुई इसके बात हो इसके विरुद्ध नहीं हो ऐसे ऐसे पुस्तकों को पढ़े तो कोई आपत्ति नहीं है
मैं बात बता सकते हैं
ठीक है
बहुत अच्छी
ठीक है ठीक है वैसे तो उस परिप्रेक्ष्य में देखे तो उसका भी एक बहुत लंबा थोड़ा प्रकरण है और उसमें भी कहीं तरफों से विचार करना होता है और वो बात ऐसे हो कि जब आप ज्यादा समय निकाल करके उधर आ जाओगे तो हम ज्यादा विचार करेंगे उसे पर क्योंकि विषय कुछ सूक्ष्म भी है और हमें लाभ भी हो नुकसान नहीं हो उतनी सावधानी हमें रखनी है इसलिए हमें थोड़ा इस विषय में अधिक सावधानी से अधिक समय लेकर के और कभी कोई अधिक हमारा शक्ति का भी योगदान देकर के हम सभी रास्ते पर आने का प्रयास करें कोशिश करें तो ये संभव है कि कुछ न कुछ उसमें से हमारे अच्छी व्यवहार के हमारी जो लाइन है वो तो जुड़ जाएंगे उसके साथ मिल जाएगी ऐसा बन सकता है तो यहाँ पर एक दृष्टांत मिलता है कि जब उनको पंक्ति लिखा हूं उन्होंने पंक्ति पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा परमार्थ दृष्टि पुरुष को अवश्य करने योग्य ऐसे समागम के लाभ में क्या परमार्थ दृष्टि पुरुष को मैंने पारमार्थिक लाभ लेने की जिसकी दृष्टि है ऐसे पुरुष को अवश्य करने योग्य ऐसा जो समागम उसके लाभ में यह विकल्प रूप अंतराय कर्तव्य नहीं है उनको ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए कि मेरे से बड़े हैं और लोग मेरी चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे अरे लोग को चर्चा करनी हो तो करने दो मुझे मेरी दुर्गति के दुख में से मुझे छुड़ाने वाला यह समाज या लोग आने वाला नहीं है मुझे ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है मुझे तो परमार्थ की प्राप्ति करनी ही करनी है ऐसा निश्चय करके ऐसा अंतराय होने वाले विकल्प का त्याग कर देना चाहिए ऐसे विकल्प को छोड़ करके सही समागम में सही सत समागम में परमार्थ दृष्टि से आना चाहिए